नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी SJVN लिमिटेड ने सरकार की 4.92% हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश बृहस्पतिवार को संस्थागत निवेशकों द्वारा बोली लगाने के साथ शुरू हुई। सरकार दो दिवसीय बिक्री पेशकश में 69 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर 4.92% हिस्सेदारी यानी 19.33 करोड़ शेयर बेच रही है। इस न्यूनतम मूल्य पर 4.92% हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश से सरकारी कोष को 1300 करोड़ रुपये से अधिक मिल सकते हैं। सरकार की वर्तमान में SJVN में 86.77% हिस्सेदारी है। इसी बीच शुरुआती कारोबार में SJVN के शेयर पिछले बंद भाव से 9.38% गिरकर 74.08 रुपये पर पहुंच गए। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख और विदेशी कोषों की निकासी के बीच स्थानीय शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट आई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मुद्रास्फीति से निपटने के लिए इस साल एक बार फिर दरें बढ़ाने का संकेत देने के बाद वैश्विक बाजारों में गिरावट आई। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 333.64 अंक टूटकर 66,467.20 अंक पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को रुपया शुरुआती कारोबार में सीमित दायरे में रहा। अमेरिकी मुद्रा में मजबूती के साथ ही घरेलू बाजार के नकारात्मक रुख का असर रुपये पर पड़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 83.16 प्रति डॉलर पर खुला, जो पिछले बंद भाव से 5 पैसे की गिरावट है। शुरुआती कारोबार में रुपया 83.08 प्रति डॉलर पर भी पहुंच गया था। बुधवार को रुपया 83.11 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इसी बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.21% की बढ़त के साथ 105.55 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.66% की गिरावट के साथ 92.91 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयारियों के सिलसिले में 10 अक्टूबर से बैठकों का सिलसिला शुरू करेगा। वित्त मंत्रालय के बजट विभाग की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार अनुदान विनियोग के संबंध में संशोधित अनुमान 2023-24 और बजट अनुमान 2024-25 को अंतिम रूप देने के लिए बजट पूर्व चर्चा वित्त सचिव और सचिव की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर से शुरू होगी। सभी मंत्रालयों और विभागों को 20 सितंबर 2023 को भेजे गए इस नोटिस में उनके साथ बैठकों का जिक्र किया गया है। बजट पूर्व बैठकों का कार्यक्रम विभिन्न ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। नोटिस के अनुसार मंत्रालयों और विभागों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक विवरण 5 अक्टूबर 2023 तक प्रस्तुत करना चाहिए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बजट पूर्व बैठकें 10 अक्टूबर से शुरू होंगी और 14 नवंबर तक चलेंगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले पेश होने वाला बजट अंतरिम होगा। आम चुनावों के बाद नई सरकार के गठन के पश्चात वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 राज्य को 1,00,000 करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। गुप्ता ने यहां ग्रेटर नोएडा में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को 1,00,000 करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसमें बृहस्पतिवार से शुरू हो रही व्यापार प्रदर्शनी UPITS निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होने वाली है। इस प्रदर्शनी का पहला संस्करण 21 से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद और MSME सचिव प्रांजल यादव भी इस संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को 2020-21 में मोबाइल फोन के अतिरिक्त उत्पादन के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। कंपनी ने 900 करोड़ रुपए के PLI प्रोत्साहन का दावा किया था। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2020 में घोषित PLI योजना के तहत सैमसंग ने यह दावा किया था। नाम ना छापने की शर्त पर सरकारी अधिकारी ने कहा, मामला सुलझ गया है, कंपनी को करीब 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस बारे में संपर्क करने पर सैमसंग इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, हम इस समय प्रोत्साहन भुगतान को लेकर भारत सरकार के साथ चर्चा के एक उन्नत चरण में हैं। उन्होंने कहा, सैमसंग 26 वर्षों से अधिक समय से भारत का एक प्रतिबद्ध भागीदार है। हम पीएलआई योजना को सफल बनाने के लिए विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार के सभी 8400 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां जल्द ही साझा सेवा केंद्र के रूप में काम करना शुरू कर देंगी। ये केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाएं, आधार नामांकन, ट्रेन आरक्षण और हवाई टिकट जैसी 300 से अधिक सेवाएं प्रदान करेंगी। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि राज्य में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए नए पेट्रोल डीजल डीलरशिप और एलपीजी वितरक के आवंटन में पैक्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को कहा कि वो पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाली नई कारों पर पाबंदी को 5 साल के लिए टाल रहे हैं। ये पाबंदी वर्ष 2030 में लागू होने वाली थी। सुनक ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वो नई पेट्रोल एवं डीजल कारों पर पाबंदी की समय सीमा को 2030 से बढ़ाकर 2035 कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्राकृतिक गैस से घरों को गर्म करने पर रोक की सीमा को वर्ष 2035 से आगे बढ़ाने की घोषणा की। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।